अध्याय 17 ब्राह्मण जैन और बौद्ध धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा। ब्राह्मण धर्म और दोनों नवीन धर्म। दोनों नवीन धर्मों पर पुरातन ब्राह्मण धर्म की स्पष्ट छाप है। दोनों ही धर्मों ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ ब्राह्मण धर्म के अनेक सिद्धांतों एवं कार्य प्रणालियों को ग्रहण किया है। धर्म को ही लीजिए, ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने धर्म की बड़ी व्यापक और उदात्त परिभाषा की थी। उनकी दृष्टि में संपूर्ण लोक ही धर्म पर आधारित है। वेदारण्यक धर्म और सत्य को पर्यायवाची मानता है। महाभारत कार का यह तो धर्मस्त्रह सत्यम का उद्घोष भी यही बताता है। अतः ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत भी धर्म की नैतिक व्याख्या की गई थी। जैन एवं बौद्ध धर्मों ने आचार तत्व को अपने धर्मों का आधार मानकर उसी नैतिक व्याख्या को अब अग्रसर किया। जब हम महाभारत कार का यह कथन सुनते हैं कि इंद्रियों और मन का दमन ही मोक्ष है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं महात्मा बुद्ध अथवा महावीर स्वामी ही उपदेश दे रहे हों। सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यान मना प्रमदः धर्मान्य प्रमदित्वयम् कुशलान्य प्रमदित्वयम् भूतम् न प्रमदित्वयम् इत्यादि तैतृय उपनिषद के शब्द या जैन एवं बौद्ध धर्मों के आचार तत्व के समान ही नहीं है। उपनिषदकार महाभारतकार महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध सभी भारतीय चेतना में आरूढ़ ब्राह्मण धर्म के विशुद्ध तत्व का ही प्रकाशन कर रहे हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्राय समस्त आचार तत्व अहिंसा दमन सत्य क्षमा आदि ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएंगे, और इनमें से बहुत से ग्रंथ दोनों नवीन धर्मों के प्रादुर्भाव के पूर्व के होंगे। अंतर केवल रह जाता है उनके व्यवहारिक पक्ष पर बल देने का। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचारवादी जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों ने इन आचार तत्वों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अधिक प्रयुक्त किया, कम से कम कुछ काल के लिए अवश्य ही। यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म वेद निंदक यज्ञ विरोधी और ब्राह्मण विरोधी है, परंतु यदि तात्विक दृष्टि हम इसकी समीक्षा करें यह असत्य निकलेगा। जिन शास्त्रा ने अपने शिष्यों को आत्म प्रशंसा और पनिंदा से बचने का उपदेश दिया, वे स्वयं किसी की निंदा कर सकते थे, यह संभव नहीं है। बात यह थी कि वे विभज्यवादी थे। प्रत्येक मत में सत्य और असत्य का विभाजन करके ही उसके अंशों को ग्रहण अथवा परित्याग करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी विमर्शक अर्थात मीमांसक होने की सलाह दी थी। ऐसी सत्यान्वेषणी दृष्टि किसी को भी एकमात्र श्रद्धा के आधार पर पूर्ण चिर सत्य मानने के लिए तैयार न थी। इसी आधार पर उन्होंने वेद प्रामाण्य को भी अस्वीकार कर दिया था। क्या एकमात्र वेद ज्ञान से उपनिषद मनुष्यों को संतुष्टि थी? यदि ऐसा होता तो वे दग्गि नारद यह कभी नहीं कहते कि मैं केवल मंत्रों को जानने वाला हूँ, आत्मा को जानने वाला नहीं हूँ। महात्मा बुद्ध ने नारद जैसे उपनिषद मनुष्यों के मार्ग का ही अनुगमन किया था, परंतु वेदों में जो कुछ भी सत्य सम्मत था वह अवश्य उनके लिए ग्राह्य था। उन्होंने स्वयं अपने को वेदगु अर्थात वेदज्ञ कहा था। यही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, और इस प्रकार ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः की परिभाषा सार्थक की। वास्तव में उन्हें ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था मान्य थी, परंतु जन्म के आधार पर नहीं वरन कर्म के आधार पर। उनकी चातुर्वर्ण्य शुद्धि के पीछे यही तथ्य नहीं था। उन्होंने उपनिषद काल की यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या को किस प्रकार नैतिक व्याख्या दी या पहले बताया जा चुका है। वे यज्ञ के विरोधी न थे। उन्होंने स्वयं पुरातन ब्राह्मणों से विशुद्ध यज्ञों की प्रशंसा की थी। वे तो एकमात्र हिंसात्मक एवं कर्मकांडी यज्ञों के ही विरोधी थे। ब्राह्मण धर्म के प्रति बिल्कुल यही दृष्टिकोण महावीर स्वामी का ही था। पर निंदा पापकारिणी होती है, ऐसी घोषणा करने वाले महावीर स्वामी वेद अथवा ब्राह्मण की निंदा नहीं कर सकते थे। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही मनुष्य वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र। जैन धर्म के इस उद्घोष में ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था के ही आमूल उच्छेद का प्रयास है। यहाँ उसे कर्म के आधार पर ही व्यवस्थित करने की चेष्टा है। जैन धर्म की दृष्टि में जो लोलुप नहीं है, जो पेट के लिए संग्रह नहीं करता, जो घर बार रहित है, जो अकिंचन है और जो गृहस्थों से परिचय नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत निष्प्रिय ब्राह्मण को जो मान्यता दी गई है वह स्पष्ट है। तप अग्नि है, जीव ज्योति स्थान है, मन वचन और काया का योग कुंड है, शरीर करिशांग है, कर्म ईंधन है, संयम योग शांति पाठ है। ऐसे ही होम से मैं हवन करता हूँ। ऋषियों ने ऐसे ही होम को प्रशस्त कहा है। धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शांति तीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न लेशा मेरा निर्मल घाट है, जहाँ स्नान कर आत्मा विशुद्ध होती है। जैन धर्म के ऐसे उद्गार औपनिषद मनुष्यों के उद्गारों से मेल खाते हैं। इनमें यज्ञ, होम, पवित्र स्नान आदि का खंडन नहीं वरन विशुद्ध संवर्धन ही है। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म में प्रख्यात यज्ञ आदि को ग्रहण कर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों ने उन्हें नैतिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इनका सूत्र वैदिक ही है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में तप की महिमा मानी गई है, परंतु क्या तप ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित न था? ऋग्वेद का कथन है कि तप से ही रित और सत्य की उन्नति हुई। उपनिषदों का कथन है कि तपस्या द्वारा ही ब्रह्म को ढूंढा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की महत्ता भी ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित थी। कठोपनिषद का उल्लेख है कि ब्रह्म प्राप्ति की कामना करने वाले ब्रह्मचर्य का अनुसरण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद का कथन है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कालांतर का ब्राह्मण साहित्य तो तप और ब्रह्मचर्य की महिमा से भरा पड़ा है। नवीन धर्मों ने ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रतिपादित तप और बलचर्य को ही अपनी व्याख्या में डालकर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था। ब्राह्मण धर्म ने चतुराश्रम की व्यवस्था की थी। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था द्वारा ब्राह्मण धर्म ने समाज में कार्य विभाजन किया था, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था द्वारा पद्धति निरूपण। आश्रम व्यवस्था के द्वारा ब्राह्मणों ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य एवं उन्हें संपादित करने का सर्वोत्तम काल निर्धारण कर दिया था। इस चतुराश्रम व्यवस्था में एक ओर लोक संग्रह की भावना थी और दूसरी ओर व्यक्ति के निजी निष्कर्ष की। ब्राह्मण ने सामान्यतया संन्यास का अधिकार उसी का को दिया था जो प्रथम तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के कर्तव्यों का सम्यक रूप से वहन कर सके। समाज संचालन के लिए आवश्यक था। पुनः व्यक्ति भी तीनों आश्रमों के जीवन का व्यतीत करने के पश्चात परिपक्व बुद्धि हो जाता था और तब वह अंतिम आश्रम में जाकर अधिक पूर्णता के साथ अध्यात्म चिंतन कर सकता था। परंतु जैन और बौद्ध धर्मों ने इस चतुराश्रम व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को बिना आयु और काल के विचार के शरीर त्याग का अधिकार दे दिया। इसका कैसा दुष्परिणाम हुआ इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। बाद का उन्हें संसार त्याग के अधिकार का नियंत्रित करना पड़ा। उनका यह नियंत्रण परोक्ष रूप से ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की परिपक्व व्यवस्था की ही मान्यता स्थापित करता है। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने चतुराश्रम में गृहस्थाश्रम को ही सर्वोच्च माना था, परंतु नवीन धर्मों ने उसे समस्त दुखों का मूल माना और उसका शीघ्रातिशीघ्र अपने अपने धर्म दीक्षित परित्याग कर देने का आदेश दिया। परंतु फिर दोनों ही धर्मों ने गृहस्थों को भी अपने अपने धर्म दीक्षित क्यों किया? इसलिए कि एकमात्र संसार त्यागी व्यक्तियों से उनके धर्म नहीं चल सकते। पुनः बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं के भरण पोषण एवं उनके संघों के जीवन निर्वाह का संपूर्ण भार भी गृहस्थों के ऊपर ही था। अतः जिस आश्रम को दोनों धर्मों ने धराशात करने का प्रयास किया वही उनका त्राता बना। क्या यह ब्राह्मणों के सर्वोच्च आश्रम गृहस्थाश्रम की मान्यता को स्वीकार करना न था? बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रतिपादित वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की जीवन पद्धति के काया क्लेश की निंदा की है, परंतु स्वयं उसने क्या किया? बौद्ध भिक्षुओं के लिए जिन यम नियमों अथवा विधि निषेधों का प्रतिपादन बौद्ध धर्म ने किया है वे वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रमों के नियमों से कम कठोर नहीं है। यदि ब्राह्मण धर्मानुयायी ब्रह्मचारियों और संन्यासियों तथा बौद्ध और जैन भिक्षुओं की जीवन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ पारस्परिक क्षमता दिखाई देगी। उनके वस्त्र, उपकरण, भिक्षा संबंधी नियम, पर्यटन, दिनचर्या, धर्म प्रचार आदि बहुत कुछ एक समान दृष्टिगत होंगे। दोनों जैन और बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। इनकी दृष्टि में मनुष्य अपने समस्त कर्मों के लिए उत्तरदायी है। कर्म के अनुरूप ही उसे फल मिलेगा। कर्म के कारण ही उसका पुनर्जन्म होता है और कर्म के कारण ही मोक्ष। परंतु ये संपूर्ण सिद्धांत ब्राह्मण धर्म में पहले से ही व्याख्यात हो चुके थे। वैदारण्यक उपनिषद का कथन है कि पुण्य कर्म से पुण्य और पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि पुरुष कर्म प्रधान है, जैसा वह इस लोक में करता है उसी के अनुरूप वह मृत्यु के पश्चात होता है। क्या इस उद्धरण में कर्मवाद पुनर्जन्म से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के बहुसंख्यक उद्धरण ब्राह्मण साहित्य में मिल जाएंगे। अब मोक्ष को लीजिए। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार विमुक्त आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। कठोपनिषद के अनुसार ब्रह्म प्राप्त मनुष्य अनाशक्त और अमर हो जाता है। ये भावनाएं बौद्ध और जैन धर्मों की मोक्ष संबंधी भावनाओं से मेल खाती हैं। जहाँ तक आत्मा परमात्मा सृष्टि आदि विषयों का संबंध है, ब्राह्मण ग्रंथों में इनके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अतः नवीन धर्मों को एक पुरातन दार्शनिक परंपरा मिली, उसका उन्होंने अपनी अभिरुचि के अनुसार खंडन मंडन परिवर्तन और परिवर्तन किया। सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि नवीन धर्म पुरातन ब्राह्मण धर्म के बहुत ऋणी है। उनके अधिकांश सिद्धांत ब्राह्मण धर्म पर ही आधारित है। वस्तुतः जैन और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म के सूत्रों को लेकर ही अपना ताना बाना बुना है। यही कारण है कि प्रत्येक विद्वान इन धर्मों को प्रोटेस्टेंट ब्राह्मणिज्म के नाम से पुकारते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों नवीन धर्मों में गहरी समानता दृष्टिगत होती है। पहला, दोनों ही वेद प्रामाण्य को नहीं मानते। दूसरा, दोनों ही ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद और जातिवाद का विरोध करते हैं। तीसरा, दोनों ही ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। चौथा, दोनों ही निवृत्ति मार्गी और संसार त्याग पर जोर देते हैं। पांचवा, इतना होते हुए भी दोनों ही गृहस्थों को ही अपने धर्म में दीक्षित करते हैं। छठवा, दोनों के अपने संघ हैं। सातवा, दोनों ही के संघ चतुर्विध है, अर्थात उनमें भिक्षु भिक्षुणी उपासक और उपासिका के चार वर्ग हैं। आठवां, दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर विश्वास करते हैं। नौवां, दोनों का ही चरम लक्ष्य निर्वाण है। दसवां, दोनों के अपने अपने तीर्थ हैं। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्रतिष्ठा है और बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ की। ग्यारह, दोनों ही अपने संस्थापकों और प्रचारकों की उपासना करते हैं, जैन तीर्थकरों की और बौद्ध बुद्धों की। बारहवां, दोनों ही धर्मों में आचार तत्व की प्रतिष्ठा है। तेरह, दोनों ही अहिंसा मूल्य। चौदहवां, दोनों ही प्रारंभ में बुद्धिवादी मत थे, उनमें भक्ति के लिए स्थान न था, परंतु कालांतर में दोनों में भक्तिवाद का उदय हुआ। पंद्रहवां, दोनों ही प्रारंभ में शरीर पूजा विरोधी और मूर्ति पूजा विरोधी थे, परंतु कालांतर में दोनों में ही इस प्रकार की पूजा आ गई। सोलहवां, दोनों दुखवाद लेकर चले और अंत में निर्वाण पर पहुंचकर सुखवादी बन गए। इस प्रकार अंततोगत्वा दोनों ही आशावादी हैं। सत्रहवां, दोनों धर्म मानवतावादी हैं और मानव को देव से भी ऊंचा समझते हैं। अठारहवां, दोनों ही जनवादी हैं। इसी से दोनों ने संस्कृत भाषा का विरोध किया, क्योंकि वह जनता की भाषा न थी। जैन धर्म ने प्राकृत और बौद्ध धर्म ने पाली को अपनाया, परंतु बाद में दोनों धर्मों में संस्कृत भाषा ने स्थान पा लिया। उन्नीसवां, यही नहीं, दोनों धर्मों के संस्थापकों की जीवनी में भी बहुत कुछ समता है। दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों ही राजकुमार हैं, दोनों ही पूर्वी भारत में उत्पन्न हुए हैं, दोनों में ही कुछ काल तक विवाहित जीवन व्यतीत किया है, कालांतर में दोनों ने ही गृह त्याग किया, दोनों को बहुत दिनों तक ज्ञान की खोज में इतस्ततः भटकते रहे, अंत में दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोनों ने ही अपने ज्ञान से जनता का कल्याण करने का निश्चय किया, अतः दोनों ने संघ स्थापना की। इन उपयुक्त समानताओं को देखकर बहुत से प्रारंभिक विद्वानों ने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को एक ही व्यक्ति माना था, परंतु ग्यूरिनो ने दोनों संस्थापकों की जीवनी की निम्नलिखित भिन्नताओं को दिखाकर उन विद्वानों का भ्रम दूर किया। पहला, वर्धमान का जन्म 1599 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ और गौतम का 1567 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु में। दूसरा, वर्धमान के माता पिता दीर्घकाल तक जीवित रहे। गौतम की माता की मृत्यु उनके समय के पश्चात 7वें दिन हो ही गई थी। तीसरा, वर्धमान ने अपने भाई की आज्ञा लेकर वैराग्य लिया था, गौतम ने अपने पारिवारिक जनों की इच्छा के विरुद्ध। चौथा, वर्धमान ने 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया और गौतम ने 7 वर्ष की तपस्या के पश्चात। पांचवा, वर्धमान की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावा में हुई और गौतम की 488 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में। परंतु दोनों धर्मों की समानता को देखकर बहुत से विद्वान बहुत दिनों तक यही समझते रहे कि इनमें से एक दूसरे की शाखा अथवा अनुकृति है। इसी आशय से वार्थ गौतम ने कहा था कि यदि हम सिद्धांत संगठन धार्मिक क्रियाओं और परंपराओं की इन समस्त समानताओं को साथ साथ रखें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों में से एक धर्म संप्रदाय है और किसी सीमा तक दूसरे की अनुकृति है। सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान जैकोबी ने प्रबलता पूर्वक इस मत का खंडन किया और दोनों धर्मों की विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें स्वतंत्र और भिन्न धर्म कहा। आज कोई भी विद्वान दोनों धर्मों को एक मानने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों धर्मों में निम्नलिखित विभिन्नताएं मिली। पहला, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। दूसरा, जैन धर्म आत्मवादी है परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी। तीसरा, जैन धर्म काया क्लेश पर विश्वास करता है परंतु बौद्ध धर्म मध्यमा प्रतिपदा करता है। इनकी दृष्टि में अतिभोग भी अवांछनीय है और अति काया क्लेश भी। चौथा, दोनों के निर्वाण प्राप्ति के मार्ग भिन्न भिन्न है। जैन धर्म त्रिरत्न का अनुसरण करने के लिए कहता है और बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग का। पांचवा, जैन धर्म ने बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर कहीं अधिक जोर दिया है। छठवा, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मृत्यु के पश्चात ही संभव है परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार वह इस जीवन में ही मिल सकता है। सातवा, जैन धर्म ने सृष्टि निर्माण संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए परंतु बौद्ध धर्म ने उसे अव्याकृत कहकर छोड़ दिया। आठवां, बौद्ध धर्म ने जाति भेद को मान्यता नहीं दी। जैन धर्म ने भी उसका विरोध किया, परंतु व्यवहार में वो उसे न ला सका। जैन धर्मावलंबियों के समक्ष जाति का भेदभाव सदैव रहा। नौवां, जैन अपने तीर्थंकरों की उपासना करते हैं और बौद्ध अपने बुद्धों की। दसवां, दोनों के धर्म ग्रंथ भिन्न भिन्न है। बौद्धों के प्रधान ग्रंथ त्रिपिटक और जैनों के आगम कहलाते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि दोनों धर्मों के ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषा में लेखबद्ध हुए।